ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में विभिन्न जन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं के शिलान्यास पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक आनंद मिश्रा और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान और मध्य प्रदेश देश के दो प्रमुख राज्यों का भ्रमण किया। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने देश के विकास में सहायक इन दो राज्यों में अनेक परियोजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। कुछ जो पूरी हो चुकी हैं उन्हें देश को समर्पित किया और कुछ ऐसी हैं जिनका निर्माण आने वाले दिनों में होने वाला है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और कुछ की आधारशिलाएं भी रखी। वहीं मध्य प्रदेश में 12,500 करोड़ से अधिक राशि वाली योजनाओं को कुछ का शुभारंभ हुआ और कुछ देश को समर्पित की गई। आज इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर और विस्तार से जानने के लिए चर्चा करेंगे और हमने आमंत्रित किया है राजनीतिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक आनंद मिश्र जी को। आनंद मिश्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि ये दो राज्य, राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। दोनों देश के विकास में, देश की संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्य हैं। उसमें प्रधानमंत्री का जो ये भ्रमण हुआ है उसमें दोनों ही राज्यों में अनेक घोषणाएं की गई हैं, कुछ परियोजनाएं पूरी हो गई हैं जिनके बारे में हम एक एक कर आपसे जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे। वहां पहला प्रश्न यही कि प्रधानमंत्री ने जो आज लोकार्पण किया है कुछ योजनाओं का, राजस्थान में भी और वहीं मध्य प्रदेश में भी, उनसे जनमानस में क्या बदलाव आएगा और इन दोनों प्रांतों के विकास में ठोस रूप से क्या मिल सकेगा, एक ओर राज्य की जनता को, दूसरी ओर देश के लोगों को।
जी, हम दोनों राज्यों की बात एक साथ करते हैं। मध्य प्रदेश में खासकर जो जल जीवन योजना है उसका काफी बड़ा असर होगा। वो चार जिलों में, वहां पे पानी की समस्या काफी समय से, कई दशकों से चलती आ रही थी, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा मैं देखता हूँ राजस्थान, उसी तरफ पे जो मिलेट के प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो एक किसानों के लिए ये बड़ी योजना होगी क्योंकि मिलेट के उत्पादन में पानी कम लगता है और राजस्थान एक डेजर्ट स्टेट है जहां पानी की बहुत आयत नहीं है। तो इन दोनों योजनाओं को अगर हम पेयजल और कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो इनके दूरगामी परिणाम हैं लोगों के जीवन को उन्नत करने में, सुधारने में। और उसी तरह हम रेलवे प्रोजेक्ट की बात देखें तो नई ट्रेनों के अलावा जो है नई रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है, वो एक बहुत ही उसके दूरगामी परिणाम है क्योंकि ट्रेनें तो कई बार जो है पॉपुलिस्ट तरीके से कई रेल मंत्रियों ने दशकों में अनाउंस की है, लेकिन एक हमेशा एक समस्या रही है कि ट्रेनों को चलने के लिए जो है रेलवे लाइन नहीं है, सुरक्षित रेलवे लाइन नहीं है और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो ये जो फोकस हुआ है नया कि रेलवे लाइन का विस्तार किया जाए, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने भी अपने राजस्थान में कहा है कि कैसे रेलवे लाइन का विस्तार हुआ है इन 9 सालों में, इसका एक दूरगामी परिणाम होगा क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस है वो जब तक बड़ा नहीं होता है तो तब तक सिर्फ जनता को लुभाने वाले जो घोषणाएं होती हैं वो बहुत लंबे समय तक उनका प्रभाव नहीं रहता है।
श्रोताओं, यहां हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने आज, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ आनंद मिश्र जी ने कहा, कि दो नई रेल सेवाओं की शुरुआत की है। हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने राजस्थान में दो रेल सेवाएं आज शुरू की। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रोणीचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को खांबली घाट से जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दो अन्य रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की हैं। इनमें 145 किलोमीटर लंबी डेगाना रायकाबाग रेल लाइन और 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं सम्मिलित हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान में रेल सड़क के आधारभूत ढांचे के विकास के साथ साथ हर क्षेत्र में तेज विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी साल रेलवे के विकास के लिए राजस्थान को करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 गुना अधिक है। यहाँ पर आनंद जी हम समझना ये चाहेंगे कि जो ये कुछ नई रेलगाड़ियां चली हैं, चाहे रेलगाड़ी नई चले, जैसा कि आपने बहुत सही कहा कि लोक लुभावन वादों के तहत कई बार रेलगाड़ियां शुरू कर दी जाती हैं लेकिन वो रेलगाड़ियां समय पर नहीं चल पाती और कई बार तो घोषणाएं हो जाती हैं और अंततः वो रेलगाड़ी समय से चल भी नहीं पाती और चलकर अटक अटक कर चलती रहती है। हम उम्मीद करें कि अब जो पूरे रेल तंत्र का विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री ने जिस रूप से फ्रेट कॉरिडोर के लिए आह्वान किया और उसके बाद तेज गति से रेल लाइनें विभिन्न क्षेत्र में बनी हैं, उसमें जो नई रेल सेवा राजस्थान के लिए शुरू की गई है वह पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को लाभ पहुंचाएगी और लोगों के आने जाने में सुविधा होगी।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए दिल्ली से जो जैसलमेर के लिए रुनिचा एक्सप्रेस चली है, पहले दिल्ली से जैसलमेर जाने के लिए मैं भी गया हूँ, कई लोग जाते हैं, तो आमतौर पर ट्रेनें बदलनी पड़ती थी। जोधपुर एक बड़ा सेंटर हुआ करता था बीच में, यहाँ उतर के लोग जाते थे, तो ये एक दिल्ली से सीधी अच्छी गाड़ी चलेगी और दिल्ली से काफी मात्रा में पर्यटक जैसलमेर जाते हैं। दिल्ली एक तरीके से गेटवे भी है, जैसलमेर विदेशी पर्यटकों का एक बड़ा केंद्र है, काफी मात्रा में विदेशी पर्यटक जैसलमेर के डेजर्ट रेगिस्तान को देखने जाते हैं, वहां का एक रेगिस्तान का एक अलग ही रोमांस है और देशी पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटकों की काफी संख्या राजस्थान के जैसलमेर की ओर जाती है और वो विदेशी पर्यटक मूलतः दिल्ली होकर ही जाते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं, फिर दिल्ली से जाया करते थे और दिल्ली से बाय रोड बहुत दूर पड़ता है जैसलमेर, जयपुर की जगह 4 घंटे में आप नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो बहुत ही थका देने वाला रास्ता है अगर रोड से जैसलमेर जाया जाए। तो ये जो एक्सप्रेस दिल्ली से जैसलमेर के लिए खुली है, इसमें उम्मीद की जाती है कि ये काफी अच्छी चलेगी और रेलवे को रेवेन्यू के तो इसमें मिलेगा ही, इसके साथ साथ ही पर्यटकों के लिए भी काफी सुविधा ये
दे सकेगी। श्रोताओं को यह जानकारी हम दे रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन की आज आधारशिला रखी। ये नया भवन 480 करोड़ रुपए की लागत से 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा। श्री मोदी ने जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ से डांगी आवास खंड को 4 लेन बनाने सहित 1,475 करोड़ रुपए की लागत की कई सड़क विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है। यहां पर आप कुछ चर्चा कर रहे थे आनंद जी, हम उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे।
जैसे जो दूसरी भी जो ट्रेन खुली है
जी,
जो हेरिटेज ट्रेन मारवाड़ और खामली घाट को जो जोड़ रही है
जी,
तो राजस्थान में खासकर पर्यटन के क्षेत्र से राजस्थान का बहुत ही ज्यादा महत्व है
जी,
तो इनका खास इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि ये सिर्फ जो है अफर्मेटिव एक्शन टाइप की चीजें नहीं होंगी, इनका एक फाइनेंशियल वैल्यू भी होगा और लॉन्ग टर्म में इससे स्टेट के इकोनॉमी में इजाफा होगा।
यहां श्रोताओं हम आपको यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 350 बिस्तर वाले ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बनने वाले 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक हैं उनकी भी आधारशिला रखी है। यानी इस प्रांत में अनेक स्वास्थ्य परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी गई, आने वाले दिनों में प्रांत के लोगों को इसका लाभ होगा। यहां पर हम आपका ध्यान आनंद जी आकृष्ट करना चाहेंगे, राजस्थान की छवि एक ऐसे प्रांत के रूप में रही है जहां पर जल का अभाव है लेकिन उसी राजस्थान का एक शहर है जो अपने जल पर्यटन के लिए या कह लें कि वाटर स्पोर्ट के लिए उदयपुर, क्या ऐसी संभावनाएं उदयपुर के साथ साथ राजस्थान में कहीं और बनती आपको दिखाई दे रही हैं जो अपने बड़े जलागार के लिए प्रख्यात हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर?
देखिए वाटर स्पोर्ट्स के लिए तो उदयपुर ही एक बड़ा क्षेत्र है राजस्थान में, क्योंकि वहां 2 बड़े लेक हैं, पिछौला लेक तो खैर बहुत ही पॉपुलर है, वहां पे अभी बोटिंग की सुविधाएं हैं और आपको लेक साइड रेस्टोरेंट भी है
जी,
और एक और लेक है जिसका अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, वो लेक उसकी साइज पिछौला से भी बड़ी है
जी,
तो वाटर स्पोर्ट्स की वहां तो बहुत सुविधाएं हैं, वहां उन लेक के आसपास बहुत बड़े बड़े होटल भी खुल चुके हैं और वो होटल हमेशा फुल रहते हैं, ऐसा नहीं कि होटल खुले हैं कोई आ नहीं रहा है, तो राजस्थान के टूरिस्ट प्लेसेस की यही ब्यूटी है कि बाकी जगहों के टूरिस्ट प्लेसेस में जैसे सीजनल टूरिस्ट जाते हैं, यहाँ आपको हर सीजन में टूरिस्ट मिल जाएंगे
यहाँ लोग आएंगे।
दूसरी एक बात है कि राजस्थान में टूरिस्ट प्लेसेज हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं, जैसे गर्मी के समय में भी माउंट आबू में टूरिस्ट काफी जाते हैं क्योंकि वो जो है पहाड़ी क्षेत्र है
जी,
गुजरात से जुड़ा हुआ और राजस्थान का हिस्सा है, मैं स्वयं ही वहां गया हूं और वहां का वेदर ही बिल्कुल डिफरेंट है, एक हिल स्टेशन ही है वो एक तरीके से
जी,
और राजस्थान में क्वालिटी टूरिस्ट की भी का विजिट है, तो ये चीजें जैसे वाटर स्पोर्ट्स की बात है आपने की तो उसको डेवलप करने की बहुत बड़ी संभावनाएं वहां पे हैं राजस्थान में।
श्रोताओं आज वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, इसे उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जुलाई में मध्य प्रदेश में शहडोल की अपनी यात्रा के दौरान की थी और इसे मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का शिलान्यास किया। यहां प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया और इसके साथ ही एक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली एक ऐसी रानी जिन्होंने अपने समय में अपने प्रांत का नेतृत्व किया और भारतीय इतिहास में अपना स्थान सदैव के लिए सुनिश्चित कर लिया। वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में जबलपुर में 21 एकड़ क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से एक स्मारक और उद्यान बनाया जा रहा है। इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची प्रतिमा और गोंडवाना क्षेत्र के इतिहास को दर्शाने वाली स्मृति के रूप में संग्रहालय का निर्माण होगा। यहां पर हम श्रोताओं आपको यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने आज मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिलों में 2350 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही सिवनी जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से प्रदेश के 1500 से अधिक गांवों को लाभ मिलेगा। यहां पर आनंद जी, हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि ये जो जल जीवन मिशन परियोजना है, यह किस रूप में प्रांत के लोगों के जीवन को उन्नत बनाने में समर्थ होगा।
पानी की समस्या मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। अब जैसे ये जो जल जीवन प्रोजेक्ट है जो मंडला, जबलपुर, डिंडोरी जैसे जिलों में लॉन्च की जा रही है करीब 2350 करोड़ के लागत से, जिससे काफी बड़ी संख्या में वहां के बासिंदों को राहत मिलेगी। ड्रिंकिंग वाटर की एक प्रॉब्लम जो है काफी समय से मध्य प्रदेश में चलती आ रही है। वहां पे सूखे का एक मल्टीपल रीजन्स पे साल में सूखा पड़ता रहा है, तो ये जो टैप कनेक्शंस जो है जैसे देश के अन्य क्षेत्रों में लोगों को मिल गए, लेकिन मध्य प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जहां पे टैप वाटर अवेलेबल नहीं है जनता को, तो ये जो स्कीम है उससे वो टैप वाटर की फैसिलिटी मिलेगी। ये सब चीजें बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अच्छा है कि अब भी हो रही है, क्योंकि ये क्षेत्र है या फिर मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है जहां मैं खुद भी कई बार गया हूं
जी,
तो वहां तो पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के पानी की भी भयंकर दिक्कत थी। तो धीरे धीरे ये चीजें सॉल्व की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने वो जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट सिवनी डिस्ट्रिक्ट में भी आज उसका भी इनॉग्रेशन किया है। वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इससे भी तकरीबन 1600 गांवों को फायदा होगा। तो ये अच्छी बात है कि जो राजनीति चुनाव के समय ही अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है कि धीरे धीरे मुद्दे जो है जनता के मुद्दों पे जब बात होगी, चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, तो सड़क, बिजली, पानी ये तो बेसिक मुद्दे पर पब्लिक के रहे हैं। तो अगर इन मुद्दों पे नैरेटिव जाता है, हमारे नेता, हमारे मंत्रीगण, हमारे विपक्ष के लोग भी इन मुद्दों पे ही चर्चा करते हैं, तो ये देश के विकास के लिए बड़ी अच्छी चीज होगी।
श्रोताओं, यहां हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने आज राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4800 करोड़ रुपए से अधिक की कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 1850 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा राज्य में 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई गई है। साथ ही 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मुंबई, नागपुर, झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने आज रखा। साथ ही प्रधानमंत्री ने जबलपुर में एक नया बॉटलिंग प्लांट भी राष्ट्र को समर्पित किया। यहां पर हम आनंद जी आपके माध्यम से श्रोताओं को संदेश देना चाहेंगे कि ये सब सिर्फ चुनावी घोषणा के रूप में रह जाएंगी या ठोस काम भी होगा जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा।
देखिए, चुनाव के समय घोषणाएं हो रही हैं तो विभिन्न दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप होगा, लेकिन देखने की बात यह है कि चुनाव के समय में भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो ये लॉन्ग टर्म में लोगों के हित की बात है। और चूंकि प्रधानमंत्री खुद इनॉग्रेट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी केंद्र सरकार को नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार के पास अभी भी तकरीबन 8 से 9 महीने हैं 2024 में चुनाव के पहले, तो उम्मीद की जाती है कि इनमें से कई योजनाओं पर काम शुरू हो चुका होगा और आने वाले सालों में
इसका लाभ हमें देखने को मिलेगा। बस हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में प्रांत के लोगों को भरपूर लाभ हो और देश का संपूर्ण विकास हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आनंद जी, श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे राजस्थान के मध्य प्रदेश में विभिन्न जन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं के शिलान्यास पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक आनंद मिश्रा और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।